सत्संग जी प्रेम से कहना, साधु माँ पुछलारा प्रेम तो आनंद जी। सत्संगत इस यात्रा के दौरान जहाँ वेस्ट बंगाल के कोलकाता में समागम करने का अवसर मिला या उड़ीसा के कटक शहर में समागम करने का अवसर मिला और कल वाइजाग विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के इस बेल्ट में एक विशाल समागम का आनंद लिया गया और अभी यहाँ काकीनाड़ा में इस सत्संग के रूप में आप सभी के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ पर कि पहली दफ़ा ही आने का मौका मिला है, वरना कई बरस पहले इस तरफ तनी तुणको इत्यादि कुछ स्थानों पर जाने का मौका मिला था और पास में ही आपके ताड़ेपल्लीगुड़म या भीमावरम या अन्य स्थान समय समय पे यहाँ आकर संतों के दर्शन करने के मौके मिले, लेकिन काकीनाड़ा कभी इस तरह से सत्संग करने का अवसर नहीं मिला। तो आज दातार की कृपा से ये अवसर, ये मौका बना जब आप सभी मिल बैठकर इस पार ब्रह्म परमात्मा निराकार के गुणगान कर रहे हैं और इसी से ही सुंदर जीवन जीने की सामर्थ्य मांग रहे हैं। ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए भक्त हमेशा उत्साहित रहता है। दुनिया में, संसार में जब हम देखते हैं कि संसार में इंसान जन्म लेता है, लेकिन उसके जीवन में हमें वो सुंदरता देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए वो जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर ही वो दुर्गंध फैलाने वाला या गंदगी फैलाने वाला बन जाता है। अगर घर में देखें तो अगर उसमें ये सुंदर भाव नहीं है तो घर का वातावरण भी वो एक विषैला बना देता है, खिंचाव वाला बना देता है। अगर गली मोहल्ले की बात करें तो पड़ोसियों के भी नाक में दम कर देगा। इसी तरह से वो एक नागरिक, एक ऐसा नागरिक होता है जो हर किसी के लिए परेशानी का कारण बनता है। लेकिन भक्तजन दिव्य गुणों से युक्त होकर जीवन जीने की जब बात करते हैं, इसका मतलब कि ऐसी सुंदर भावनाएं जो हृदयों में बस जाती हैं जिसके भी, वो घरों के वातावरण को भी सुंदर बनाता है और पड़ोसियों को भी अपना परिवार जानता है और हमेशा ही उसके मन में दूसरों के काम आने के जज्बे होते हैं। वो प्यार से रहता है, दूसरों को खुशी प्रदान करता है, उसमें दया और करुणा का भाव होता है। दूसरे की पीड़ा देखकर इसके अपने मन में ऐसी एक करुणा का भाव पैदा हो जाता है और पीड़ा हरने के लिए जहाँ तक हो सके वो उसमें अपने तन मन धन के योगदान देता है। तो ये एक ऐसा नागरिक होता है जो कि घर, समाज, संसार के लिए वरदान हुआ करता है। तो ऐसे ही नागरिक हर कोई बन पाए, यही एक महापुरुषों की हमेशा चेष्टा रही है। ये यही एक जतन और प्रयास करते रहे हैं, हर इंसान को ये संदेश और पैगाम देते रहे हैं, ताकि इंसान वाकई नी खूबियों से ये युक्त हो जाए, ऐसे दिव्य गुणों से युक्त हो जाए, जीवन को श्रृंगार मिल जाए। जीवन को श्रृंगार जिसको कहते हैं वो यही गुणों के कारण है, ऐसे मानवीय मूल्यों के कारण है, मानवीय गुणों के कारण है, ये प्रेम, करुणा, दया, मिलवर्तन के भाव के कारण है। ये ऐसे दिव्य गुण हैं जो जीवन को श्रृंगार देते हैं, जिनका मन चंगा हो जाता है। जैसे कहा भी है कि जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि जिसका मन चंगा हो जाता है, मन में एक नेकी आ जाती है, मन के भाव शुद्ध हो जाते हैं, तो वो वास्तविकता में पूज्य हो जाता है, वो दूसरों के लिए वरदान बन जाता है। संसार में इस श्रृंगार के लिए इंसान ने दुनियावी साधनों का इस्तेमाल किया और उसने श्रृंगार भी दिया तो शरीरों को दिया, उसने सुंदर रूप दिया तो मकानों को दिया, उसने बाहरी सब कुछ उसको श्रृंगार देने का, खूबसूरत बनाने का और खूबसूरत दिखाने का प्रयास किया। लेकिन जीवन की असली सुंदरता वो एक भावों के कारण है, सुंदर भावों के कारण है, सुंदर गुणों के कारण है। वो श्रृंगार असली जेवर जो सोने चांदी और हीरे से कहीं ज़्यादा कीमती हैं, ऐसा एक श्रृंगार करते हैं जो वाकई वो सुंदर होते हैं हरि की निगाह में। हरि की निगाह में वही सुंदर हुआ करते हैं, वरना लाख आभूषण लाख सुंदरताएं हों लेकिन हरि की निगाह में वो कुरूप होते हैं। चाहे लाख धन दौलत वाले हों, हरि की निगाह में वो कंगाल होते हैं। लाख विद्वान हो, दुनिया की विद्याएं हासिल किए हुए हों, हरि की निगाह में वो मूर्ख होते हैं, अनपढ़ होते हैं, क्योंकि उनके हृदय के भाव जो हैं वो सुंदर बने नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में रोशनी हुई नहीं है। एक अंधेरा सा छाया हुआ इस मन में और गंदगी से भरा हुआ ये मन, और यही गंदगी से भरा हुआ मन जीवन को भी एक विषैला कर देता है। जीवन की चाल ही भटकी और बहकी हुई चाल ये बन जाती है। तो इसीलिए महापुरुष सत्संग के ऊपर जोर देते हैं कि अगर हम संतों का संग करते हैं तो तभी हमें ये सुंदर भाव प्राप्त होते हैं। एक संतों का संग जिसने भी किया, वास्तविकता में उसी ने अपने जीवन को ऊंचाई प्रदान की है। अगर वो संतों की मत को धारण कर लेता है, अगर वो संतों की मत को धारण नहीं करता, यहाँ पर भी संग की जब बात आती है, संतों के संग की बात आती है, तो इसका मतलब कि एक शरीर रूप में समीपता नहीं कि एक शरीर चल कर आया और बाकी संत भी वहाँ उपस्थित हैं, तो शरीर को सामीप्य तो मिल गया, लेकिन अगर मन करके इसके साथ नहीं जुड़ते, अगर मन को वो पात्र नहीं बनाते, मन को वो एक ऐसा कटोरा नहीं बनाते जिसमें कि वो उत्तम शिक्षाएं को स्थान दिया जा सके और उन भावनाओं को अपनाया जा सके, तो तब भी हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे वो भी उदाहरण मिसाल कई दफ़ा दी गई कि इसी तरह से एक नलका पानी का, और उसको कहा गया शिष्य को कि जाकर पानी भर के ला, और वो गागर उसने रख दी और काफ़ी देर इंतज़ार किया और आखिर खाली घाघर लेकर वापस लौट आया, और मालिक ने पूछा कि क्या बात है, घाघर नहीं भर के लाया, क्या पानी नहीं था? कहता नहीं, पानी तो था, फिर घाघर खाली कैसे, चलो दोबारा जा। दोबारा गया, फिर वही सिलसिला। तो इस तरह से घाघर खाली की खाली। तो एक दिन फिर उस्ताद साथ गया, मालिक साथ गया, क्या बात है तेरी गागर फिर खाली की खाली, भर के नहीं लाता तू? तो गया, देखा कि वो नलका बह भी रहा है, पानी बह भी रहा है। तो पूछा, तूने कल कैसे रखा था? वो कहने लगा, ऐसे रखा था, वो देखा तो उल्टा के उसने रखा हुआ, कि उल्टा के रख दिया, ऊपर से पानी बह रहा है तो भरे क्या, उल्टा के ही रख दिया। फिर कहा कि अच्छा, अब दूसरे दिन फिर कैसे रखा था? कहने लगा, ऐसे रखा था, यानी कि पानी जहाँ पे धार थी उससे हटा कर रखा, उससे थोड़ी दूरी पर रखा हुआ, तो फिर भी कहाँ पानी भरे, फिर कहा कि अब रख। अब देखा, रखा तो उसमें फिर भी पानी टिक नहीं रहा, देखा कि नीचे ज़मीन गीली हो गई, तो देखते हैं क्या उठा कर कि उस गागर में सुराख हुआ पड़ा है, तो उसमें पानी ठहर ही नहीं रहा है। तो इस तरह से महापुरुष संत जन उदाहरण देकर यही समझाने के प्रयास करते हैं कि एक वास्तविकता में हम पात्र को अपने इस रूप में बना लेते हैं, एक नाता इस तरह जोड़ लेते हैं। इस धारा जो बह रही है वो तो दुनियावी नलके तो फिर भी कहीं बंद हो जाते हैं, एकदम से हमारे घरों में नलके बंद हो जाते हैं, गली में जाते हैं वहाँ नलका बंद है, वहाँ पानी नहीं आ रहा है, भागते हुए कुएं के पास जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वाटर लेवल बिल्कुल नीचे है, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है। तो वो दुनियावी जल तो उसमें तो कभी प्राप्त होता है कभी नहीं होता, वो धारा बहती है कभी नहीं बहती, लेकिन ये जो धारा है ये एक नाम की धारा, ये ज्ञान की धारा, ये तो बहती ही चली जाती है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि हम किस तरह से इस धारा से लाभ उठाते हैं, किस तरह से हम अपना पात्र रखते हैं, किस तरह से हम नाता जोड़ते हैं। तो संत तो रोशनी देते ही चले जाते हैं, संत तो एक उत्तम शिक्षाएं देते ही आए हैं और दे रहे हैं, लेकिन अगर मन में अगर ऐसे उल्टापन आ जाए जैसे वो गागर उल्टा के रख दी, या फिर कहीं एक अकीदे विश्वासों में छेद हो जाए, इस प्रकार का छेद हो जाए, तो वो एक वास्तविकता में हम होकर भी हम वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि सही लाभ उठाने के लिए यही एक ढंग है, यही एक सलीका है, यही एक तरीका है। और इस तरह से महापुरुष संत जनों ने अपने आप को भरने का और भरपूर होने का यही ढंग बताया है। और वाकई ही जो इस तरह से भर जाते हैं इस नाम से, इन दिव्य गुणों से, एक भक्ति वाले भाव से, एक करुणा और दया वाले भाव से, वो आनंदमय उनका जीवन हो जाता है, वो औरों के लिए भी कल्याणकारी हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो उदाहरण, वो मिसाल भी कई साल पहले दास दिया करता था, कई बरसों के बाद वो याद आ गई कि एक इंसान को कहा कि तूने शीतलता लेनी है, ठंडक लेनी है, गंदगी को दूर करना है, मैल को दूर करना है, तो छलांग लगा ले। उसने छलांग लगाई और छलांग लगाते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा पीड़ा से, तो पीड़ा से चिल्लाने लगा, क्या बात हुई? जो खड़े थे वो दूर भाग कर पहुँचे किनारे पर, देखा कि उस तालाब में तो पानी ही नहीं था। अब उसमें पानी ही नहीं था तो ठंडक क्या मिलनी थी, शीतलता क्या मिलनी थी, उल्टा वो ज़ख्म खा कर आ गया, चोट खा कर आ गया। इसी तरह से अगर ये भरपूर नहीं होता हमारा मन इस निर्मल जल के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा, इस रूप में अगर ये भरा हुआ नहीं, तो फिर कोई हमारे पास आएगा वो भी हमसे आनंद नहीं ले पाएगा, वो हमसे शीतलता नहीं ले पाएगा। और वो इसी तरह से एक अपने मन को दुखाकर हमसे दूर हो जाएगा। तो इस तरह से महापुरुषों ने, संतों ने कई ढंगों से ये समझाने के ये प्रयास किए हैं, ताकि इंसान इस पहलू को भली भांति समझ जाए और वो एक उपलब्धि कर लें, वो एक प्राप्ति कर लें, वो अपने जीवन को भरपूर कर लें, एक इस कदर भरपूर कर लें कि वो हमेशा ही भरा रहे, वो कभी फिर खाली ना होने पाए, इस लोक में ऐसा भर लें अपने आप को कि परलोक में भी वो फिर भरा हुआ है। ऐसा एक भरपूर अपने आप को करना, ऐसा एक मालामाल अपने आप को करना, ऐसी एक अमीरी प्राप्त करनी जो एक लोक तक सीमित नहीं है, जो दोनों जहानों में कायम रहती है, ऐसा एक कदम उठा लेना है, ऐसा कर गुजरना है। तो इसलिए संतों महात्माओं के संग की विशेषता है। लेकिन एक विधि जिसको प्राप्त हो जाती है कि हम ऐसे संग से लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन को किस तरह से ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, ये विधि भी जिसको आ जाती है तो वो हमेशा ही अपने आप को वो भरपूर पाता है। इसलिए संतों का संग ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आना है, जीवन में एक ऐसी क्रांति आनी है, जीवन में ऐसी एक ऊंचाई अगर आनी है, वो संतों के संग के द्वारा ही संभव है। वरना तो फिर अगर ये भी साधन ना हो, फिर तो पहले ही इंसान का मन जैसा है, पहले ही मन की फितरत और प्रवृत्ति जैसी है, वो तो हम देख ही रहे हैं। कदम कदम पर गिरावट नज़र आती है, कदम कदम पर एक ऐसी मनमति हमें नज़र आती है, कदम कदम पर वहशियानापन हमें नज़र आता है, कदम कदम पर लोभ और प्रलोभन हमें नज़र आते हैं। जो संत महात्मा भक्तजनों के पास जाते हैं तो उनके पास एक संतोष होता है, सब्र होता है, एक अर्पण करने का भाव होता है। और जब संसार की बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्रवृत्ति जो है वो छीनने वाली है, वो हक को छीनने वाली है, वो लोभ लालच की पूर्ति के लिए जितनी भी गिरावट हो सकती है उतना गिर जाएगा, केवल उस लोभ को पूरा करने के लिए, उस लालच को पूरा करने के लिए वो इतना गिर जाएगा। तो वो एक ऐसी प्रवृत्ति वालों का संग हम करते हैं तो हमारे हिस्से में भी गिरावट आ जाती है। तो इसलिए संग डूबे संग तारे, कि एक संग ऐसा है जो डुबो देता है, और संतों वाला संग, भक्तों वाला संग, वो हमारा पार उतारा कर देता है, वो हमें ऊंचाई तक ले जाता है। तो इसलिए संत और साकत, मनमुख और गुरमुख, इस दोनों में बहुत बड़ा एक अंतर बताया गया है। साकत संग न जाऊं, जैसे कहते हैं कि होनहार सो होए है साकत संग न जाऊं, कि एक चौकी भूसी खाऊं, होनहार सो होए है साकत संग ना जाऊं, कि मैं साकत का संग ना करूं, मैं मनमुख का संग ना करूं, क्योंकि ऐसे संग ने पहले भी डुबोया है। जिस जिसको भी ऐसा संग मिला, उसकी अपनी मति ऐसी है, वो हमें भी वही रंग दे देता है, हमें भी उस रास्ते पे ले जाता है जिस रास्ते पे डूबना निश्चित हुआ करता है। जो आज से सदियां पहले जिन्होंने ऐसी मति को धारण करा, वो भी डूब गए। तो इसलिए पार उतरने का, ऊंचाई को प्राप्त करने का, जीवन को एक ऐसा सुंदर रूप देने का ढंग जो बताया गया, वो एक वही संग है, जो संग संतों वाला संग है, जो भक्तों वाला संग है। तो ऐसे संग को प्राप्त करके अपने जीवन को एक सुंदर रूप देने के लिए भक्तजन हमेशा ही एक जतनशील रहते हैं। और इनकी महिमा वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में गाई गई है कि जो ऐसी अवस्था वाले हैं, जो आठों पैर इसके साथ जुड़े रहते हैं, जो उठते बैठते इसका संग बनाए रखते हैं, जो अपना दामन इससे छुड़ाते नहीं हैं, जो अपना मुख इससे विपरीत दिशा की तरफ करते नहीं हैं, जो इसके एहसास में इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं, तो उनकी महिमा अपरंपार बताई गई है। सुपने हो बड़राय के जय मुख कहिए राम, ताके पग की पहनी मेरे तन को चाम। कि किस तरह से महापुरुष कहते हैं कि जो इस कदर जुड़ा हुआ है कि अगर नींद से भी उठता है तो तब भी उठते ही उसका ध्यान इसकी ओर चला जाता है, तो वो सोते जागते उठते बैठते इसके एहसास में जी रहा है, यानी कि इस कदर इसके रंग में रंगा हुआ है। तो कहते हैं उसकी महिमा कितनी अपरंपार है कि मेरे तन को चाम, कि उसके पाँव की जूती बनाने में मेरे शरीर की चमड़ी भी अगर काम आ जाए तो वो कम है। इस कदर इतना ऊंचा दर्जा ये दिया गया है ऐसी एक अवस्था वालों को, जो इसके साथ जुड़ते हैं, जो मति को अपनी एक संतों वाली मति के रंग में रंग लेते हैं, जो भाव जो हैं वो संतों वाले सजनों वाले बना लेते हैं, तो उनका एक रुतवा एक बहुत ऊंचा हुआ करता है। और दूसरी तरफ जैसे तुलना की जा रही और तुलना होगी, अगर सवेरे की बात आ गई तो अंधेरे की भी जिक्र आएगा ही आएगा, अगर फूल का जिक्र आया तो कांटे का जिक्र आएगा ही आएगा, अगर मानवता का जिक्र आया तो दानवता और शैतानियत का जिक्र आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों ही रूप हमें संसार में देखने को मिलते हैं, दोनों ही रूप इस संसार में हैं, दोनों ही पहलू हैं, अंधेरा भी है सवेरा भी है, नेकी भी है और बदी भी है, प्यार भी है और घृणा नफरत भी है, ये दोनों ही पहलू ये संसार में ये रहे हैं। इसी तरह से साधु भी और दूसरी तरफ साकत भी रहे हैं, हमेशा रहे हैं, हर युग में रहे हैं, हर दौर में रहे हैं। लेकिन महत्ता वही बात महापुरुषों ने, जैसे कबीर जी जैसे संत, या फिर हम तुकाराम जी की वाणी पढ़ते हैं, पतन्ना जी की वाणी, वैमन्ना जी की पढ़ते हैं, या फिर हम पंच सखा की पढ़ते हैं, कितने कितने रूप भक्तों के संतों के संसार में आए, या हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, अनेकों अनेकों धर्म ग्रंथ पीरों पैगंबरों ने जो एक संदेश दिया हर मानव इंसान को, वो इसी की तरफ अग्रसर करते हैं, वो इसी की तरफ ये प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने इस जीवन को एक सुंदर रूप दे दें, एक सही दिशा की तरफ अपना मुख कर लें, और उसी दिशा की तरफ फिर हम अपने कदमों को हम बढ़ाते चले जाएं। यही एक आज भी इस सत्संग में महापुरुष तेलुगु भाषा में, भोजपुरी भाषा में, हिंदी भाषा में, पंजाबी भाषा में, मराठी भाषा में, इतनी इतनी भाषाओं में, और छोटे छोटे बच्चों की ज़ुबान से सुना, जवानों की ज़ुबान से सुना, बुज़ुर्गों की ज़ुबान से सुना, वो सब रूप चाहे कैसे भी थे, चाहे वो उम्र के तकाजे कैसे भी थे, लेकिन संदेश जो था उनका, वही संदेश जो बहुत कीमती है, जो प्रेरणादायक है, जो कल्याणकारी है, वो एक संदेश दिया गया। और अगर इंसान वाकई ही ऐसे संदेश को सुनकर उसकी तरफ ध्यान देता है, उसको अपना लेता है, उसको क्रियात्मक रूप दे देता है, तो वास्तविकता में वो सबसे ज़्यादा सूझवान माना जाता है, और वो जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि वो हासिल कर लेता है। तो इसी भाव से ये एक आयोजन होते हैं ऐसे सत्संग के, ताकि जन जन तक यही एक संदेश पहुंच पाए, ताकि सभी इस मालिक से नाता जोड़ें, इस मालिक की पहचान करें, और अपने तमाम अज्ञानता के अंधकार को मिटा दें, और जितने भी श्वास मालिक ने बख्शे हैं, जितनी भी ये जीवन या शरीर की आयु है, जितने भी श्वास हैं, इन तमाम श्वासों को हम उन्हीं सुंदर गुणों से युक्त होकर हम इन श्वासों को हम बिता दें। ये श्वासों का कोई भरोसा नहीं है कि कितनी देर ये श्वासों की लड़ी चलते रहनी है, ये कोई भी भरोसा नहीं है। ये तो पल की खबर नहीं कि एक कल की बात करते हो या बरसों की बात करते हो, ये तो पल की भी खबर नहीं है। ये तो इसलिए कहा है कि अपनी एक श्वासों की इस कदर कदर कर लो कि एक एक पल को सजा लिया जाए, एक एक पल को श्रृंगार दे दिया जाए। ये हैं कीमती, लेकिन एहसास हो जाए, इसकी कीमत का एहसास हो जाए, इसकी कदर हो जाए, इस अपने इंसानी जन्म की कदर हो जाए, और जितने श्वास मालिक ने बख्शे हैं, एक एक पल की कदर हो जाए, तो फिर एक एक पल सुंदर ढंग से बिताया जाएगा और शोभा प्राप्त करेंगे, और औरों के लिए भी हम कल्याणकारी हम बन पाएंगे। तो यही एक अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे, सबको ऐसी सुमति दे, सबको ऐसा ध्यान बख्शे, सबको ऐसी जागृति प्रदान करे, ताकि सभी इस तरह की अवस्था में आकर अपने इस जीवन को, एक सुंदर रूप दे दें, कांटे की बनस्पत एक फूल का सुंदर रूप बन जाए, जो फूल हर हालत में हमें एक ठंडक देता है, हमें सुकून देता है। जैसे अंग्रेज़ी में कहा गया है कि फ्लावर्स आर फॉर ऑल ओकेजन्स, कि एक फूल जो होते हैं वो हर ओकेजन पे हम देखते हैं। हालांकि कोई पीड़ा वाले मौके के ऊपर भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, एक खुशी के अवसर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, पूजा अर्चना के काम में भी लाते हैं, स्वागत करते हैं तब भी फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फूल हर ओकेजन में हम उसकी कीमत जानते हैं, उसके गुण को जानते हैं कि वो खुशी को खुशी में भी उस खुशी को दुबला कर देता है, और गमी के मौके पर भी कुछ हमें ठंडक मिलती है, कुछ इस तरह से हम उसको समर्पित करते हैं सत्कार के रूप में, क्योंकि उसकी कीमत जानते हैं, उसके गुण को जानते हैं। इस तरह से भक्तों का भी जीवन वो फूलों की मानिंद हो जाता है, वो हर हाल में अपनी वो सुगंधी, अपने वो गुण वो बनाए रखता है, और उन्हीं गुणों से वो सबका मन जीत लेता है। तो इस तरह से एक शायर ने जो ऐसे ही फूलों को ध्यान में रखकर जो एक शेर कहा, जिसको दास ने चंद दफ़ा पहले भी दोहराया, कि जिसमें वो कह रहा है कि किस प्रकार से एक फूल जो है वो किस तरह से एक महकता हुआ रहता है, चाहे उसके चारों तरफ फूल हों या फिर उसके चारों तरफ कांटे हों, वो फूल जो है अपनी वो महक वो बनाए रखता है। वो इस तरह से अपने आप को वो एक ऐसे गुणों से वो युक्त रखता है, फिर उसके चारों तरफ कांटे हैं फिर भी वो उसी तरह से अपने महक बिखेरता रहता है, और अगर चारों तरफ उसके फूल हैं फिर भी वो अपनी महक वो देता रहता है। इसी प्रकार से भक्त भी कहीं पर भी विचरण करता है, वो महकता हुआ उसका सुंदर रूप वो महक ही देने वाला होता है, वो ठंडक ही देने वाला होता है, वो खूबसूरती बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे ही सबके जीवन में ये एक गुण आ जाए, यही एक शुभकामना। इसी प्रार्थना, इसी अरदास के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय भी काफ़ी अधिक हो चुका है, और अंत में फिर से दास अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ आंध्र प्रदेश के इस काकीनाड़ा शहर में आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हो रही है, और ये सत्संग के रूप में जो ये घड़ियाँ आपके साथ बिताने को मिल रही हैं तो बहुत खुशी हासिल हो रही है। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और ये भी अरदास करेगा कि दातार कृपा करें, आप सभी को ऐसी तौफीक दे, सभी इस भक्ति के नाम के रंग में रंगे रहें और संसार का उद्धार करने में अपने योगदान देते रहें, और दातार सबको दुनियावी सुख भी तन मन धन के प्रदान करे। इन्हीं शब्दों से दास साहब से इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन्यवाद।